हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, श्लोक भी लेंगे और स्नान यात्रा के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में मुकुंद दत्त उनका भी तिरुभाव है और आखिरी में खुलावेचा श्रीधर उनका भी तिरुभाव है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सबके आशीर्वाद की याचना करते हुए अब श्लोक दोहराएंगे। प्रचेतस ऊचु स्वागतम ते सुरर्षेद्य दृष्ट्यानो दर्शनम गतः तव चक्रमणम ब्रह्मन् अभयाय यथारवेः। प्रचेतस ऊचु स्वागतम ते सुरर्षेद्य दिष्ट्यानो दर्शनम गतः तव चक्रमणम ब्रह्मन् अभयाय यथारवेः। प्रचेतस ऊचु स्वागतम ते सुरर्षेद्य दिष्ट्यानो दर्शनम गतः तव चक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथारविः। प्रचेतसाऊचु स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्ट्यानो दर्शनं गतः तव चक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथारविः। प्रचेतस ऊचुः माताएं अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ प्रचेतसः ऊचुहु, बोलिए। प्रचेताओं ने कहा, सुआगतम स्वागत ते तुम्हारा तुमको, सुर ऋषे हे देवर्षि अध्य आज दिष्ट्या सौभाग्य से नह हम सबके दर्शनम दर्शन गतः आया हुआ तब तुम्हारा चक्रमणम घूमना फिरना गतिविधियां ब्रह्मन् हे ब्रह्मण अभयाय अभय के लिए यथा जिस तरह रवे है सूर्य की। तो पिछले कल के दिन तीसरा श्लोक चर्चा हुआ था, तो चौथा और पांचवा दोनों ही है, तो मैं चौथे से शुरू करता हूँ, चौथे का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ, फिर पांचवे पे आता हूँ। तो चौथे में बोल रहे हैं, प्रचेताओं ने जो ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए, यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। तात्पर्य यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रचेता भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। अब पांचवा का अनुवाद और तात्पर्य, सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करने लगे, हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उचक्कों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। तात्पर्य, रात्रि के अंधकार से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में चोरों तथा उचक्कों से भयभीत रहता है। लोग प्रायः सड़कों पर निकलते डरते हैं, और हम जानते हैं न्यूयॉर्क जैसे महानगर में भी लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नगर में हो या ग्राम में, कुछ ना कुछ भयभीत रहता है, किंतु सूर्योदय होते ही सबों को चैन मिलता है। इसी प्रकार यह संसार अंधकार पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल दुर्घटना से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे नारद जैसे भक्त के दर्शन होते हैं तो उसका सारा भय जाता रहता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार नारद जैसे ऋषि के प्रकट होने से अज्ञान भाग जाता है। जब कोई नारद से या उनके प्रतिनिधि गुरु से मिलता है तो वह अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य हैं, दोनों ही तात्पर्य बड़े सुंदर हैं। तो चौथे पे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। चौथे अनुवाद को अगर आपने ध्यान से सुना हो तात्पर्य को, तो चौथे अनुवाद में अनुवाद बोलता है, श्लोक का अनुवाद बोलता है कि भगवान जैसे नारद मुनि पहुंचे वैसे ही प्रचेता खड़े हो गए एकदम तुरंत, और उनका स्वागत किया और स्वागत करके उनको आसन वगैरह दिया और फिर कुछ पूछने लगे। लेकिन प्रभुपाद का तात्पर्य उसका कुछ उल्लेख नहीं करता। प्रभुपाद का तात्पर्य पिछले जो प्रभुपाद का विचार चल रहा था उससे आता है। प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं ये उल्लेखनीय है, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि प्रचेता भगवान पे ध्यान लगा रहे थे, जो इतनी तपस्या कर रहे थे ध्यान भगवान के ऊपर लगा रहे थे। प्रभुपाद का आप देखेंगे ज़्यादातर जगहों पे प्रभुपाद इम्पर्सनलिज्म मायावाद को काटते हैं, यहाँ पे भी वही भाव में प्रभुपाद जा रहे हैं। ना कि उसके जा सकते थे प्रभुपाद किस तरीके से गुरु का आदर करना चाहिए, किस तरीके से वरिष्ठ भक्तों का आदर करना चाहिए, किस तरीके से स्वागत करना चाहिए, बहुत कुछ लिखा जा सकता था। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे जाके तात्पर्य में सिर्फ इतना ही बोलते हैं एक सेंटेंस में कि वो भगवान पे ध्यान लगा रहे थे। और ये मायावाद को काटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसकी चर्चा आज असल में मुकुंद वासुदेव और इनकी भी चर्चा है। तो उस पर थोड़ा सा मैंने चिंतन किया था, मैं पांचवा नहीं लेने वाला था लेकिन पांचवा भी दिया गया, तो क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ हैं या भगवान की लीलाओं से होता है। जो आज की चर्चा है स्नान यात्रा मुकुंद दत्त, बड़ी मनमोहक या बड़ी क्या बोलते हैं हमको लुभाने वाली लीलाएं हैं। और वो लीलाओं को सिर्फ भक्त जो भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान के साकार रूप का कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव इनका जो ध्यान करते हैं उन्हीं को उनमें आनंद आ सकता है। जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, तो उनका तो भगवान बोलते हैं क्लेशो अधिकतर रस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करते हैं, उनका तो जो साधना होती है बहुत क्लेशप्रद होती है, बहुत क्लेश देती है। और स्वाभाविक रूप से हम विचार करके देखें, ऐसे बैठे हैं और एक ज्योति के बिंब पे ध्यान लगाना जिसमें कोई रस है ही नहीं, कितनी देर ध्यान लगाया जा सकता है। कई लोग मोमबत्ती पे ध्यान लगाते हैं और एक पैर पे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा योगासन में है मोमबत्ती पे ध्यान लगाते हैं एक पैर पे ऐसे एक टक खड़े होते हैं और फिर धीरे से आँख को बंद करते हैं। अगर ध्यान आपका चूका तो आपका बैलेंस डिगमगा जाएगा, अगर ध्यान नहीं चूका तब तक आपका बैलेंस रहेगा। तो अंदर ध्यान रहना चाहिए। कितनी देर करेगा आदमी, इसको बोलते हैं उग्र तपस्या, बड़ा मुश्किल है। और भगवान ये स्टैंप लगाते हैं ये तपस्या बड़ी काम की नहीं। ठीक है, इसके बाद में परमात्मा तो हाँ साकार तो हैं, हृदय में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, कुछ करते नहीं, वो खड़े हुए बस देख रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, खड़े हुए, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं, चतुर्भुज एक ही आकार में, भगवान जैसे त्रिभंग ललितम नहीं है, श्याम सुंदर जैसे एक दिए एक ही आकार में हो, बस देख रहे हैं ऐसे आँख खड़ी खुले करके हंस रहे हैं, सौम्य हैं, भागवतम में कई बार उनका वर्णन आता है, बहुत सुंदर दिखते हैं, पर हमारा मन बड़ा चंचल है, भागता है इधर उधर, उसको पकड़ने के लिए कोई चंचल व्यक्ति चाहिए, वो चंचल व्यक्ति को चंचलता खींचेगी। और ये संसार परमात्मा के, ब्रह्म तो छोड़ दीजिए, परमात्मा के भी अगर परमात्मा पे ध्यान करने के, या परमात्मा कितने मनोरंजन हमको देते हैं, परमात्मा में कितना रूप रंग है, उसके मुकाबले ये संसार ज़्यादा रंगीला है, ठीक है ना, संसार में बहुत रंग है, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से वहाँ भागेगा, उसको बहुत बार बार पकड़ के लाना पड़ेगा, जो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं या तो निश्चल की, जहाँ जहाँ भागता है मन उसको पकड़ के लाओ, वापस बैठाओ, कितनी देर करेगा, अरे भाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, स्कूल में वही करते थे, भाग के लेके आओ, माँ बोलती थी बैठो पढ़ो बैठो पढ़ो, अभी बोर हो गए, अभी जरा कुछ आनंद की अनुभूति करनी है। और हम कभी भी नए लोगों को क्लास देते हैं तो ज़्यादातर टीचर नए लोगों को क्या बोलते हैं, क्या उद्देश्य है जीवन का, जीवन में क्या प्राप्त करना है, आप खाते हैं कमाते हैं नौकरी करते हैं तो क्या प्राप्त करना है, हाँ जी आनंद प्राप्त करना है, हर किसी को आनंद प्राप्त, तो लोगों को लगता है हाँ हाँ, फिर हम सेकंड सेंटेंस में बोलते हैं देखो आपको आनंद मिला पैसा कमा के, कोई आनंद होता है, नहीं होता, हम उसके बारे में बताते हैं, नए लोगों को जब क्लास देते हैं उसके बारे में बताते हैं, इसमें कोई आनंद है, ये प्रॉब्लम बताते हैं, बोलते हैं हाँ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, फिर वो दुखी हो जाते हैं, अरे फिर क्या, तो हम बोलते हैं देखो यहाँ पे आनंद ही आनंद है, तो यहाँ पे बड़ा आनंद है, लेकिन परमात्मावादी वो नहीं दिखा सकते, ना ब्रह्मवादी वो दिखा सकते, आनंद है ही नहीं, वही बैठना है, वही उनका क्लेश प्रताप, पूरे सुबह से शाम तक कंपनी में मेहनत करनी है 12-13 घंटे, फिर घर आना है ट्रैफिक जाम में, वो आश्रम में आए ब्रह्मवादियों को ध्यान लगाना है सुबह से, कमर में दर्द हो रही है। इस पर याद आया मेरे को, एक बार गिरिराज महाराज बता रहे थे, वो इस्कॉन में आने से पहले, प्रभुपाद से मिलने से पहले, वैसे एक आश्रम में जाते थे जहाँ पे ब्रह्म पे चिंतन करते थे, तो सबको बिठाया जाता था ऐसे, बताया हम लोग ऐसे बैठते थे और सबको बताया जाता था एकदम सोना नहीं है, और जो उनका इंस्पेक्टर था मॉनिटर, वो ऐसे चलता था पीछे से और एक छड़ी रखता था, वो मारता नहीं था लेकिन जो सोता होता था ठंड आवाज करता था, रुक जाते थे कितने दिन करेगा, फिर त्रस्त हो जाते हैं, हमको आनंद चाहिए, आनंदमय अभ्यासार्थ, जो जीव है वो आनंद की खोज कर रहा है, किस संसार में आनंद की खोज कर रहा है, वैकुंठ जगत का आनंद नहीं मिल रहा तो इस संसार में आनंद की खोज कर रहा है, और इसलिए भगवानवादी जो हैं, आप मंदिर हॉल में एंट्री करेंगे हर जगह पे है, यहाँ पे तो नहीं बलराम हॉल में भी है, लेकिन मंदिर हॉल में आज सुबह जब कर रहा था तो जो गौरनिताई का गेट है वो गेट के ऊपर चित्र बना हुआ है, कितना सुंदर चित्र, कौन ऐसे में ऐसी पिक्चर कौन नहीं देखना चाहेगा, पिक्चर ही एंट्री मिल जाए वो पिक्चर में, रियल लाइफ हो जाए तो क्या बात है, उसमें भगवान झूला झूल रहे हैं और बच्चे उनके साथ में, कोई आदर सम्मान नहीं है, बच्चे उनके साथ में, बच्चे नीचे हैं भगवान खेल रहे हैं और वो झूला झूल रहे हैं ऊपर से नीचे स्प्रिंग सीजन में, और नीचे वाले बच्चे जो झूला नहीं झूल रहे वो उनको बिगुल बजा के बुला रहे हैं, क्या आनंद है, इसमें आनंद है। और प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हमारा मन असल में भगवान की शक्ति है, ये तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भगवान प्रभुपाद बोलते हैं मन जो है मन का दोष नहीं है, मन भगवान ने हमको शुद्धि दिया है, हम उसको कई जन्मों से अनर्थों में, मतलब बिन बेकार की चीजों में उसको लगा के रखे हैं तो वो भटक रहा है, मन का दोष नहीं है, मन को अभी हम, मन भूल चुका है, मन को हमने बहुत समय से वो आनंद दिया ही नहीं आध्यात्मिक जगत का, हमने वही गंदा गंदा चीज दिया, तो इसलिए मन अभी वहीं भागता है, लेकिन मन अपने आप में शुद्ध है, और वो मन क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान ही उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, और इसलिए भागवतम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत लीलाएं हैं जिससे हमको आकृष्ट होना है, अगर लीलाओं से हम आकृष्ट नहीं होंगे, सिर्फ सिद्धांतों से आकृष्ट होंगे तो हम में और ब्रह्मवादियों में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, हालांकि चैतन्य चरितामृत में बोला है सिद्धांत बढ़िया चित्त ना करे आलस्य यहाँ हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कि सिद्धांत के बिना हम सहजिया हो जाएंगे, अगर सिद्धांत क्लियर नहीं है तो हम सहजिया हो जाएंगे, हम सोचेंगे भगवान बहुत चीप हैं ऐसी लीला हम भी कर सकते हैं, हम इमिटेशन करने लगेंगे उसकी नकल करने लगेंगे, सिद्धांत बहुत ज़रूरी है लेकिन सिद्धांत में ही रहेंगे तो हमारा भी जीवन क्लेशप्रद रहेगा, इसलिए लीलाओं में अनुरक्त होना बहुत जरूरी है, पर सिद्धांत के साथ। फिर से ऐसा ना हो फिर सिद्धांत भूल जाए, अरे अब तो कई साल हो गए मेरा, हो गया सिद्धांत क्लियर है, अब मैं लीलाओं में जाऊंगा, अब बस लीलाओं में नहीं। इसलिए आप चाहते अभी भी हम पढ़ेंगे, जब खुदा विचार श्रीधर को पढ़ेंगे, पास्ट टाइम जो लीला है वो बड़ी मधुर है। भगवान खुदा विचार श्रीधर को कैसे चिढ़ाते थे, क्या करते थे, परंतु उसके साथ में बड़ा अच्छे सिद्धांत श्रीधर चैतन्य महाप्रभु जब उनको चिढ़ाते हैं तो श्रीधर कोलावेचा जब उनको जवाब देते हैं, बड़े ऐसे मार्मिक सिद्धांत बोलते हैं जिसके बारे में प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं, कोलावेचा श्रीधर का एग्जाम्पल हम सबको फॉलो करना चाहिए। वो उतने प्रखर भक्त हैं जितने युधिष्ठिर महाराज हैं, उतने ही बड़े सत्यवादी हैं, तो वो फॉलो करना चाहिए और उसका वो हम चर्चा करेंगे। तो ये लीलाओं के साथ में तत्व मिला हुआ है, खासतौर पर भागवतम की लीलाओं के साथ तत्व बहुत मिला हुआ है, और चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत तो उसमें भी जाएंगे हम। अच्छा ये तो हो गया, ये पांचवा जो श्लोक है उसके भी तात्पर्य पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत चर्चा करने को है, लेकिन फिर उसमें जाना है हमको, लीलाओं में अनुरक्त होना है, ठीक है, तो उसको पढ़ने हैं, पढ़ना है। अच्छा पांचवे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्लोक बोलता है कि नारद मुनि सूर्य के समान हैं, जैसे कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, वैसे ही भक्त का भी गुण भगवान जैसा ही होता है। भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं नमाम कर्माणी लिम्पंती नमे कर्म फले स्पृहा, कि मुझे तो कर्म छूते नहीं, छूते भी नहीं, उनसे मैं लिप्त तो होता ही नहीं, और वैसे ही मेरे को जो जान लेता है वो भी कर्म से लिप्त नहीं होता, मतलब मेरा शुद्ध भक्त भी कर्म से लिप्त नहीं होता। तो भगवान जैसे ही गुण भक्त के भी होते हैं, भगवान मिल जाए या भक्त मिल जाए एक ही चीज होगा, क्या, तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो हमको खींच के तमस में से, अंधकार में से या अज्ञान में से बाहर निकाल के हमको ज्योति में ले जाएंगे, ज्ञान की ज्योति में ले जाएंगे। और फिर ये तात्पर्य बड़ा सुंदर बोलता है कि हमको भय काहे का होता है, एंग्जाइटी जिसको टेंशन बोलते हैं, आज टेंशन समाज में किस बात का टेंशन है, अज्ञान के कारण टेंशन है। अगर अज्ञान ना हो, ज्ञान हो, तो टेंशन है ही नहीं। जैसे एक छोटी सी बात बोलूंगा, प्रभुपाद अपने लेक्चर में एक बार बताते हैं कि जब अर्जुन या ये वीर लोग लड़ते थे बड़ी बड़ी युद्धों में, धर्म युद्ध में लड़ते थे, इनको भय इतना भी नहीं लगता था, मतलब भय होता ही नहीं था, ऐसा नहीं कि भय को दबा के रखते थे। आजकल भी लोग चलाते हैं बंदूक और बोलते हैं शेर हूं, लेकिन भय होता है अंदर, इन लोगों को भय नहीं होता था, क्यों, क्योंकि पूरा ज्ञान था। ज्ञान क्या था, देखो भाई बचपन से ट्रेनिंग था, गुरुकुल से बचपन से ठोक ठोक के अंदर डाल दिया था, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और ये बाण किसको लगते हैं, शरीर को लगते हैं। तो भारत में वो लोग, और ये भी क्षत्रिय थे, मतलब बहुत ऊंचे कुल के लोग थे, जो पिछले जन्म में भी बहुत अच्छे संस्कारी लोग थे, तो वो आत्म साक्षात्कारी होते थे, उनको पता है, उनको शरीर से ज़्यादा आसक्ति होती नहीं थी, तो डर लगता ही नहीं था। एनी वे शरीर तो मरना ही है, शरीर खत्म होना ही है, ये तो डेड है ही, मरा हुआ है ही, तो चिंता क्यों करनी। और मैं अगर धर्म युद्ध में लड़ूंगा, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं मेरे को कम से कम स्वर्ग लोक मिलेगा अगर मरा, कम से कम, वैकुंठ जगत नहीं मिला तो स्वर्ग लोक तो मिलेगा ही, और जीवित रहा तो इस धरती का राज भोगूंगा, तो टेंशन आता ही नहीं था। और ऐसे ही पूरा जीवन जो जीते थे, टेंशन नहीं आता था, कोई मर गया तो टेंशन नहीं आता था, दुख होता था कि भैया एक भक्त का संग छूट गया, टेंशन कुछ नहीं आता था। आज लोगों को क्या टेंशन है, मेरा पति अगर मर गया, पत्नी को टेंशन होता है, पति मर गया तो LIC अगर नहीं छोड़ के गया तो मैं कहां से खाऊंगी ये टेंशन आती, टेंशन का सिक्योरिटी का या शरीर का, आदमी को टेंशन होता है, और यार पत्नी मर गई तो मेरे को रोटी बना के कौन देगा, इतने साल की आदत पड़ी है रोटी खाने की, आदत नहीं है, फिर मेरे को आश्रम में जाके खाना पड़ेगा, इतने साल तो ब्रह्मचारी था, आश्रम में खाते खाते बोर हो गया था, शादी की पत्नी है वो मर गई तो फिर से आश्रम में खाना पड़ेगा, अरे यार टेंशन बहुत है। तो ये काय का टेंशन आता है, शरीर का टेंशन आता है, एनीवे जो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, शरीर का बड़ा टेंशन होता है, लेकिन जब शरीर से आत्म साक्षात्कार हो गया तो शरीर का टेंशन ही नहीं है। तो अंधकार से हमको ज्ञान की तरफ निकालने के लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, और जितना उन्नत भक्त होगा उतना हमको ज्यादा प्रभाव होगा। तो ये दूसरा तात्पर्य बोलता है, और इन भक्तों का, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं वहां पर आ रहा हूं, इन भक्तों का संग करने का सबसे अच्छी विधि क्या है पता है, भागवतम में बार बार आता है, शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य, श्रद्धा पूर्वक सुनना। देखिए जहां भी हमारी श्रद्धा होगी वहां हम बहुत अच्छे से सुनेंगे, जहां हमारी श्रद्धा नहीं होगी वहां हम सुनेंगे जरूर, लेकिन आएगा जाएगा, आया राम गया राम शब्द, यहां से आया, सुना, चला गया। लेकिन जहां हमारी श्रद्धा होगी वहां हम सुनेंगे, और ये बहुत जरूरी है, श्रद्धा पूर्वक सुनना। सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा, सुनना, अप्लाई करना, सुनना पे फिर मनन करना और फिर अप्लाई करना। क्योंकि सुनने के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा हर एक व्यक्ति में डिफरेंस हो सकता है अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार, हर की परिस्थिति अलग है। वो सुना हुआ अपना मनन करना है, उसमें कोई और हेल्प भी नहीं कर सकता। सुनना ध्यानपूर्वक है, मनन खुद करना है, कैसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करूं। दूसरे से कॉपी हम नहीं कर सकते, थोड़ा सटल डिफरेंस होगा, बहुत सूक्ष्म रूप में डिफरेंस होगा। तो ये सुनना बहुत जरूरी है, और इनके बारे में अगर हम सुनते हैं तो हमको बहुत हम आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए हम आज से आज इनकी लीलाओं को सुनेंगे, और ये हम अब चैतन्य भागवतम में से पढ़ेंगे। उससे पहले अच्छा स्नान यात्रा है, स्नान यात्रा के बारे में थोड़ा सा बोल दूं। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में तो ज़्यादा उल्लेख नहीं आता। मैंने कई भक्तों से पूछा तो बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी की लीलाओं में ही ज़्यादा उल्लेख है, तो उसका तो इतना ज्ञान नहीं। लेकिन जो स्नान यात्रा का मूलभूत चीज़ है, भगवान इस दिन भगवान का जन्म होता है, जन्मदिन है। और अब पूछेंगे अरे जन्माष्टमी पे भी जन्मदिन है, ये भी जन्मदिन है, वही ठाकुर जी का दो दिन जन्मदिन कैसे? तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में बड़ा एक सुंदर श्लोक है, श्लोक तो अभी याद नहीं आ रहा। वो श्लोक में देवी देवता पूछते हैं भगवान से, जब भगवान जन्म लेते हैं, हे भगवान अभी जन्म हुए थे, देवकी के गर्भ से अभी अभी आए थे, गर्भ से तो नहीं आते लेकिन दिखाया कि आए थे। तो देवी देवता आते हैं और भगवान को स्तुति करते हैं, और बोलते हैं भगवान जरा हमको ये बताओ, देवकी जी ने, दिख रहा है उनको अभी जन्म दिया, लेकिन बोलते हैं जरा हमको ये बताओ देवकी जी ने आपको किस दिन जन्म दिया? क्यों? भगवान पूछे क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अगर आप बता दोगे ना हमको देवकी जी ने हमको आपको किस दिन जन्म दिया, हम आपकी खुशी के लिए बड़ा एक उत्सव मनाएंगे। बड़ा सुंदर चीज है, उत्सव अपनी खुशी के लिए नहीं मनाएंगे, आपको खुशी देने के लिए हम बड़ा उत्सव मनाएंगे, लेकिन ये बता दो कौन से दिन जन्म लिया। क्योंकि पहली बात तो आप अजन्मा हो, दूसरी बात जन्म लिया आपने, लेकिन कई बार जन्म होता है आपका, कभी भी जन्म होता है, स्नान यात्रा में भी जन्म हो गया, जन्माष्टमी में भी जन्म हो गया, कब जन्म लेते हो आप? और ये सारी नित्य लीलाएं हैं। तो हम असल में जन्माष्टमी कभी भी मना सकते हैं, जब मूड आए, भक्तों को आए मूड कि भगवान को आज प्रसन्नता देने, क्या फेस्टिवल मनाएं, चलो जन्माष्टमी मनाते हैं। एक बार तमाल कृष्ण महाराज न्यूयॉर्क में सैन फ्रांसिस्को में टेंपल बन गया था, तो प्रभुपाद से पूछे प्रभुपाद लोगों को आकृष्ट करने के लिए क्या किया जाए, तो प्रभुपाद बोले वैदिक सिद्धांत है हर दिन होली डे होता था, होली डे। प्रभुपाद एक्चुअली बोले हॉलीडे नहीं, हॉलीडे को संधि विच्छेद कर दिया, इंग्लिश में संधि विच्छेद नहीं है, प्रभुपाद ने कर दिया, प्रभुपाद बोले हॉलीडे नहीं है वो, संधि विच्छेद करो तो होली प्लस डे, कि दिन जो बहुत होली है, बहुत मतलब होली मतलब शुभ, शुभ ना, ऑस्पिशियस या शुभ दिन, ऐसे दिन को मनाना है। तो वैदिक संस्कृति में हर दिन आप देखेंगे, अगर महाभारत वगैरह पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, वो जमाने में आज से कई साल पहले, 500-600 साल पहले, हर दिन उत्सव मनाते थे, कुछ ना कुछ उत्सव गांव में चलता रहता था, एक घर में होता था बाकी सारे आ जाते थे, कुछ ना कुछ उत्सव मनाते रहते थे। तो भक्तों को आनंद आता है भगवान को आनंद देने में, भगवान को आनंद आता है फिर लड्डू पूरी हलवा पूरी सब खिलाने में भक्तों को, और खाओ पियो नाचो गाओ मजे करो। इससे अनुरक्त जब हो जाता है तो भगवत धाम जाना बहुत आसान हो जाता है, जो प्रभुपाद जी चौथे इसमें बोले। तो स्नान यात्रा भी ऐसा ही है कि भगवान का आज के दिन नव यौवनम, मतलब आज भगवान को निलाया जाएगा, भगवान को प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं अंदर से गर्भगृह से, और जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो उत्सव देखने जाते थे, बड़ा खुशी होती थी, लेकिन एक साथ उनको खुशी भी होती थी और दुख भी होता था। खुशी कहीं की होती थी, अरे वाह भगवान बहुत पास आ गए और भगवान को निलाया जा रहा है, और फिर निलाने के बाद शाम को भगवान को जो वेश पहनाया जाएगा वो गणेश का वेश पहनाया जाएगा, बलराम जी और इनको, वो आज देखेंगे अभी जगन्नाथ मंदिर में, और फिर उसके बाद में क्या होगा, बाद में भगवान बीमार पड़ जाएंगे, फिर 15 दिन तक दर्शन नहीं देंगे, बड़ा बुरा लगता था। और जैसे वो स्नान खत्म होने से पहले पहले चैतन्य महाप्रभु वहाँ से भाग जाते थे और जाके आलालनाथ में चले जाते थे, और तब से ये बन गया कि भगवान फिर जगन्नाथ जी आलालनाथ में रहते हैं, वहाँ पे चले जाते थे। तो ये उत्सव भक्तों को बड़ा आनंद देता है कि भगवान का हर दिन तो अभिषेक नहीं हो सकता, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, उनके मदन मोहन विग्रह का अभिषेक किया जाता है क्योंकि वुडन है, देखने से भौतिक दृष्टि से वो लकड़ी के हैं तो पेंटिंग खराब हो जाएगी। तो ये 15 दिन में उनको पेंटिंग किया जाता है अच्छे से, उनको बीमारी में बीमारी की औषधि दी जाती है। ये बड़ा सुंदर उत्सव है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जो भी संबंधित उत्सव हैं हम इस्कॉन आदियों के लिए क्या बोलेंगे प्रभुपादानुगा इस्कॉनानुगा भी बोल सकते हैं, उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्कॉन की स्थापना हुई जगन्नाथ रथ यात्रा से। इस्कॉन बढ़ रहा है तो रथ यात्रा से, सब कुछ रथ यात्रा पर डिपेंड है। और प्रभुपाद बचपन में रथ यात्रा करते थे जो कि उन्होंने उनके पिताजी स्पॉन्सर करते थे, पिताजी करवाए, और वही प्रभुपाद बोलते हैं मैंने जो छोटे में किया वही बड़े में कर रहा हूँ, वही खेलता था छोटे में मैं बच्चों के साथ में, अब तुम्हारे साथ में खेल रहा हूँ बड़ों में, पहले छोटी रथ बनाता था अब मैं बड़ा रथ बनाता हूँ, फर्क कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया। तो ये बड़ी सुंदर लीला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि और भी सुंदर लीलाएँ। अब भक्तों की लीला, भगवान की लीला तो सुंदर है ही, जो भक्तों के साथ भगवान का संबंध है वो बहुत ही मनमोहक है, और हम देखेंगे अभी आगे चलेंगे तो कितना मनमोहक है। उससे पहले मैंने कुछ लिखा था, एक आपने गोविंद दामोदर माधवेति, किस तरीके से अनुरक्त हमको होना है इसका पराकाष्ठा है गोपियों का। और गोविंद दामोदर माधवेति में ये श्लोक आता है, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। बड़ा सुंदर श्लोक है। समझते हैं गोपियां हर दिन क्या करती थी, दूध दही विक्रेतु कामा, उसकी बिक्री करने, उसकी बिक्री करने के लिए बेचने के लिए वो जाती थी, और दूध दही घी लेके चलती थी, और जाते जाते विक्रेतु कामा केल गोप, लेकिन उनका मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, लेकिन उनकी चित्त की वृत्ति, चित्त बोलते हैं मन, जो दूषित मन है उसको चित्त बोलते हैं, यहाँ पे चित्त ही यूज किया है दूषित मन, क्योंकि गोपियों को लगता था हमारा मन कितना दूषित है, हम घर के काम नहीं कर पाते, ये काले कृष्ण को हम इतने आसक्त हो गए कि हम घर के काम नहीं कर पाते, तो चित्त इसलिए यूज किया है। तो हालांकि चित्त नहीं था, उनका मन एकदम शुद्ध भाव में था, तो वो मुरारी पादार पे, मुरारी के पाद कमलों में लगा हुआ था, उसके कारण होता गया था वो मोहवशाद, उनको भी मोह पड़ता था, जैसे हमको मोह पड़ता है माया का, वैसे उनको भी मोह पड़ता था, लेकिन ये दैव भगवान की दिव्य माया अंतरंगा शक्ति का। और ये मोह बड़ा सुंदर मोह क्या होता था, जाते थे बोलना होता था 10 रुपए का दही ले लो, 20 रुपए का घी ले लो, या जो भी कॉस्ट बोलनी होती थी, लेकिन मुंह से निकलता था और वो गोविंद धामो धर्माधवेति, और बोलते थे भाई कीमत क्या है, गोविंद गोविंद गोविंद, अरे इसकी कीमत दामोदर दामोदर दामोदर। अरे अभी लोग कई लोग चीटिंग भी कर जाते होंगे हो सकता है, लेकिन भगवान जब ऐसा चित्त हो जाता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर युपासते तो योगक्षेम महामेम, भगवान संरक्षण करते हैं, और तब सिर्फ जो हमारे को जरूर हमारी जरूरतें होती हैं उनको नहीं, हमारा भंडार ऐसे भरा होता है जैसे मुर्गारी का भंडार भरा, मुर्गारी ने सोचा भी नहीं था, मुर्गारी बोल रहा था तीर कमान तोड़ दूं क्या, हनुमानी बोले तोड़ दो कोई चिंता मत करो, गाँव के बाहर जाओ जप करो और तुलसी महारानी, अरे जीविका कैसे करेगी, चिंता मत करो, गांव में जाके नारद मुनि ने ढिंडोरा पीटा वो संत बन गया, ओ संत बन गया, अच्छा संत के पास तो जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो गए तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, अगर पूरे गांव ने इतना इतना भी दिया तो भंडार बन जाता था, लेकिन उसका समय लोग कंजूस तो थे नहीं, खेती में खूब उपजता था, तो ले जा ले जाके टनों में आ गया, ये टेंशन में, अब इनको उल्टा टेंशन हुआ, अब घर भरा ही रहता है, खाली करो ताकि हम भजन कर पाए, चिंता मत करो भंडारा चालू करो, और भंडारा चालू हो गया, सब खा रहे थे। तो ये भगवान को ऐसे चित्त लगने से ब्रजवासियों जैसा हाल हो जाएगा, और इस ऐसा चित्त लगने के लिए हम पहला उदाहरण लेते हैं मुकुंद दत्त का, जिनका आज तिरुभाव है, और तिरुभाव के दिन मुकुंद दत्त हमको वैसी आसक्ति दें जैसी उनको आसक्ति थी। बड़े सुंदर लीलाएँ हैं, पता नहीं कालोस्मी लोकक्षय ख्याल है हूँ मैं, भगवान पता नहीं कितनी देर तक अनुमति देंगे, कब खत्म कर देंगे, 9 बजे ख़त्म करना है, तो देखते हैं कितनी लीला, लीला तो बड़ी सुंदर है। तो इसमें बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत में दिया है, मुकुंद दत्त चट्टग्राम डिस्ट्रिक्ट में, वो गांव था चनहरा, वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ था, और प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ का पुलिस स्टेशन, अब पता नहीं पुलिस स्टेशन क्या होगा, लेकिन उस समय लिखा जब प्रभुपाद ने 77 में, 77 से पहले पुलिस स्टेशन का नाम है पटिया, वहाँ पे हम जाएंगे तो पुलिस स्टेशन हम पूछ सकते हैं, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके थोड़ा ही दूर पे कुछ 14-15 किलोमीटर दूर पे विद्यानिधि, पुंडरिक विद्यानिधि का भी जन्मस्थान है। और जब पुंडरिक विद्यानिधि, वो भी लीला आगे आएगी तो उसका थोड़ा बोल दूँ, जब पुंडरिक विद्यानिधि बड़ा एक ऐश्वर्य की लीला कर रहे थे, एक ठाट बाट की, एक पूरे एकदम निपट भौतिकवादी की, तो सिर्फ मुकुंद वासुदेव और उनके भाई मुकुंद दत्त और उनके भाई वासुदेव दत्त, ये दो ही उनको समझ पाए थे कि ये भगवान के कितने उन्नत भक्त हैं। और इनका जो कृष्ण लीला में जो इनका स्थान है वो मधुकंठ और मधुव्रत, मुकुंद दत्त मधुकंठ हैं और वहाँ पे भी वो बड़े सुरीले गाते हैं, और दूसरे उनके भाई वहाँ पे भी हैं मधुव्रत। तो इसको गौर गणेश देश दीपिका को कोट करते हुए प्रभुपद बोलते हैं, ब्रजे स्थित गाय कौ यौ मधुकंठ मधुव्रतौ मुकुंद वासुदेव तौ दत्तौ गौरांग गायकौ। कि ब्रजे स्थित गायकौ, ब्रज लीला में भी वो गायक हैं, कृष्ण के साथ गाते हैं, कृष्ण नाचते हैं वो गाते हैं, और उनका नाम है मधुकंठ और मधुव्रतौ, और अभी गौरांग लीला में वो मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त बने। तो ये तो उनके क्या रूप है। अब हम आते हैं चैतन्य भागवत से जो प्रभुपद वहाँ पे कोट करते हैं 11वां अध्याय और 12वें अध्याय में, इसको पढ़ेंगे। बहुत सिंपल पास्ट टाइम में, बहुत सिंपल बंगाली है। जितनी भी भगवान की बाल्य लीलाएं हैं उनका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में नहीं किया, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही उनका चर्चा अपनी चैतन्य भागवत में कर दी थी, तो चैतन्य चरितामृत में ये पास्ट टाइम मिलते नहीं। प्रभुपद ने वहाँ पे कोट किया है उस अध्याय में, ऊपर पोर्ट में, कि वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ से हम लेंगे। ये 11वां आदि लीला, चैतन्य भागवत आदि लीला 11वां अध्याय है, बड़ा सुंदर है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन से चालू करते हैं यहाँ पे। जय जय महामहेश्वर गौर चंद्र बाल्य लीला श्री विद्या बाल्य लीलाय श्री विद्या विलासेर केंद्र जिनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर प्रति अंगे निरूपम लावण्य सुंदर। इसका ट्रांसलेशन है कि जय जय महामहेश्वर, जो भगवान गौरांग महाप्रभु जो सारे लोगों के ईश्वर हैं, और वो बाल्य लीला में, क्योंकि अब मैं बाल्य लीला बोलने जा रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, बाल्य लीला में वो विद्या विलास में थे, सिर्फ वो पढ़ाई पढ़ाई करते थे, हर जगह पे पढ़ाई करते थे और तर्क वितर्क में लगे थे, और वो मेनली स्कॉलर थे ग्रामर के, व्याकरण के, बाकी ज़्यादा आपको भगवान तो हैं ही, लेकिन भगवान तो भगवान है, सबका ज्ञान है उनको, लेकिन व्याकरण वो एक्सपर्ट बताते थे, मैं व्याकरण में एक्सपर्ट हूँ, और वो लोगों को पकड़ते थे और उनके बस अच्छा लगता था, पंडितों को अच्छा क्या लगता है, लोगों को पकड़ना और उनको हराना, पकड़ना हराना, तो किसी भी भक्त को पकड़ते थे, अभक्त को पकड़ते थे, जो भी पंडित होता पकड़ते थे, उड़ा देते थे लेफ्ट एंड राइट, और फिर आगे जाते थे दूसरे को पकड़ते थे। तो भक्त लोग जहाँ तक है, आगे आएगा, चैतन्य महाप्रभु से अपना आँख चुरा के भाग जाते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु आगे से आते हुए दिखते थे तो मुकुंद दत्त एकदम अबाउट टर्न करते थे, पीछे भागते थे, और चैतन्य महाप्रभु पीछे भाग के उनको पकड़ते थे, तू मेरे से पीछे आँख चुरा के क्यों जा रहे हैं, बता इस प्रश्न का जवाब दे, या तू पूछ मेरे से प्रश्न, वो बोलते नहीं मेरे को नहीं पूछना प्रश्न, नहीं पूछना पड़ेगा, पूछ अब चलो पूछता हूँ, तो पूछ देते, तो ऐसे ही। और फिर बोलते हैं जिनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर, वो ऐसे थे जैसे कामदेव, हजार हजार करोड़ों कामदेव जब इकट्ठा हो जाएं तो उनका कितना सुंदरता होगा, उतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु का बाल्यपन में था जब वो नवयुवक थे। प्रति अंगे निरूपम आजानु लंबित भुज कमल नयन अधरे तांबूल दिव्य वास परिधन। ये तो बहुत सिंपल है, भगवान हमेशा पान खाते रहते थे बचपन में, लाल होंट रहते थे, और उनको लाल होंटों से एकदम सुंदरता उनकी और भी बढ़ जाती थी, और हाथ जो हैं आजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ, उनकी जो कांति थी वो पिघले हुए सोने, जैसे राधा रानी की कांति है, पिंक पिघले हुए सोने की कांति थी, और बहुत ही सुंदर यौवन था उनका। तो अभी आते हम सेकंड पार्ट में, जो आगे ही जाता है, लेकिन अब देखिए भगवान इस लीला में, बाल्य लीला में, अपने भक्तों से, भक्तों ने उनको डांटा कई बार, यहाँ पे इस श्लोक में वो नहीं आएगा, लेकिन कई भक्त बोलते थे, उनसे उम्र में तो बड़े थे, तो बोलते थे अरे बाप मेरे, जैसे कभी कभी बड़े छोटे को बोलते हैं ना, अबे बाप मेरे भक्ति कर लेना, क्या ये ज्ञान में लगा हुआ है। ऐसे अद्वैत आचार्य वगैरह शिक्षा दे देते थे कई बार, यहाँ पे मुकुंदत वगैरह भी शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे आता है, साक्षात ओ प्रभु देखी केह बोले की कार्य गोना की कार्य गोनाय काल तुमी विद्या भोले। कि क्या कर रहे हो, साक्षात हो प्रभु देखी केह बोले। वो जब देखते थे भगवान को साक्षात चैतन्य महाप्रभु का ऐसे सब करते हुए, निमाई पंडित के रूप में पांडित्य दिखाते हुए, तो बोलते थे की कार्य गोवाए काल, क्यों तुम अपना काल व्यर्थ कर रहे हो, भगवान को भूल के सिर्फ तर्क वितर्क में लगे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम ही विद्या भोले और बस विद्या के अभिमान में तुम घूम रहे हो। सुनिया हासे न प्रभु सेवके रवाक्य, प्रभु बोले तोमरा शिक्षा ओ मोर भाग्य। चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर बड़ा सुंदर, चैतन्य महाप्रभु को बुरा नहीं लगता था क्योंकि मालूम है चैतन्य महाप्रभु सिर्फ भक्त लोग एक आवरण पड़ गया था उनकी बुद्धि पे, भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे भगवान की योग माया शक्ति के कारण कि भगवान है कौन। लेकिन भगवान को बड़ा सुंदर लगता था, भगवान बोलते भी है ना, जब बड़े बड़े भक्त देवी देवता मुझे पुरुष सूक्त से उठाते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगता। जब यशोदा मैया मेरे को डांटती और डंडा दिखाती है, मैं तेरे को बांध दूंगी मुंह खोल, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे भक्त जब भगवान को डांटते हैं, ऐसे भगवान के निजी भक्त, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान बोलते हैं प्रभु बोले तुम्हारे शिक्षा ओ मोर भाग्य, आपकी जो शिक्षा आप दे रहे हो ना मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन आगे आगे बोलेंगे दिखाऊंगा मैं तुमको एक दिन मुकुंदत, तुम जो मेरे से मुंह चुरा के भागते हो, एक दिन दिखाऊंगा मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि तुम तो क्या, तुम तो आओगे क्योंकि तुम तो परम वैष्णव, लेकिन इंद्र चंद्र ब्रह्मा भी आके मेरे दरवाजे पे मस्तक टेकेंगे, मैं इतना बड़ा भगवान का भक्त बन जाऊंगा, देखना तुम एक दिन दिखाऊंगा। अभी ये आगे के श्लोक बताते हैं मुकुंदत की क्या गुण थे, बड़े सुंदर गुण थे, कैसे वैष्णव थे मुकुंदत, वो आगे के कुछ श्लोक बताते हैं। सर्व वैष्णवेर प्रिय मुकुंद एकांत, मुकुंदेर गाने द्रवे सकल महांत। तो इससे पहले के कुछ श्लोकों में मैंने काट दिया वो श्लोक, इससे पहले के कुछ श्लोकों में आता है जिस समय चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित की लीला कर रहे थे, उस समय नवद्वीप का जो हाल था सभी को मालूम है, बड़े पंडित लोग थे, भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, भक्त लोग अगर कीर्तन करते थे तो वो लोग बोलते थे क्या कीर्तन कर रहे हैं, रात को अगर जोर जोर से कीर्तन करेंगे तो विष्णु जग जाएंगे मालूम है, और विष्णु जग गए रात को उनको डिस्टर्ब हुआ तो हाहाकार आ जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। बोलते थे ये श्रीवास और इसके भाई सारे के सारे हमको नरक लेके जाएंगे, कौन से शास्त्र में दिया है बताओ, कौन से शास्त्र में दिया है कि नाचना चाहिए गाना चाहिए, किस में दिया है, क्या आराम से धीरे धीरे बोल के जब करने से कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता, वो सिर्फ पुण्य में ही लगे हुए थे और उनको समझता ही नहीं था कि एवं व्रत प्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चित्त उच्चई हसती अथो रोदती रौदी गायती उन्माद व नृत्यति लोक बाह्य। भागवतम के 11वें स्कंद में दिया है कि भक्त जब भगवान में बहुत लीन हो जाता है, बहुत ही अनुरक्त हो जाता है, तो वो उच्च स्वर में गाता है और नृत्य करता है, 11वें स्कंद में बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं भागवतम में, वो लोग बोलते थे भागवतम में मैंने पूरा भागवतम, एक का बोलते हैं वहाँ पे कन्वर्सेशन लोगों के बीच में कि मैंने पूरा भागवतम पढ़ा है, दोस्त मेरे सुनो मैंने पूरा भागवतम पढ़ा है आगे से पीछे, भगवद्गीता पढ़ी, एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जहाँ पे बोलते हैं जोर जोर से नृत्य करना चाहिए गाना चाहिए, क्या कर रहे हैं लोग, पूरे समाज को बिगाड़ रहे हैं, किसी दिन काजी को पता चल जाएगा और सब हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बात करते थे, इसलिए भक्त लोग क्या करते थे यहाँ पे एकांत, सर्व वैष्णवेर प्रिय मुकुंद एकांत, मुकुंद वासुदेव ऐसे भक्त निमाई पंडित से भी भागते थे और कभी कभी अकेले में जाके अपना भजन करते थे, एक दूसरे से ही बात कर लेते थे भगवान के बारे में। और वहाँ पे ये जो चैतन्य भागवत है जो हमारे वेदाबेस में है उस पर तात्पर्य दिए हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उसमें एक तात्पर्य में बड़े सुंदर चीज लिखते हैं, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया ये पढ़ने के बाद, कल जब मैंने इसको पढ़ा ये तात्पर्य को, बड़ा सुंदर चीज लिखते हैं, लेकिन हमको उसको इमिटेट नहीं करना है। वो बोलते हैं जब जब भगवान या भगवान के महान भक्त यहाँ पे लीला करते हैं तब तो हमको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, बाहर जाके प्रचार वगैरह करना चाहिए, लेकिन जब भगवान नहीं होते भक्त नहीं होते तो अनुकूल यही है कि एकांत भजन करें, निर्जन भजन करें। हालांकि ये एक ही तात्पर्य मिला, बाकी सब जगह पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं नहीं हमको प्रचार करना चाहिए, हमेशा प्रचार करते रहना चाहिए, ये एक ही में बोलते हैं। तो इसके यहाँ पे रिलेटेड है, इसलिए बोलते हैं वहाँ पे कि ये मुकुंद वगैरह सब एकांत में अपना भजन करते थे। आगे बोलते हैं विकाल विकाल हईले आसी भागवत गण अद्वैत सभाय सबे हय न मिलन। और सब एक साथ आके अद्वैत सभा में अद्वैत आचार्य के वहाँ पे कीर्तन करते थे। और जब जब मुकुंद दत्त गाते थे, मुकुंदेर गाने द्रवे सकल महान, जैसे ही मुकुंद दत्त गाना शुरू करते थे सबके हृदय एकदम द्रवित हो जाते थे और भाव में चले जाते थे। यही मात्र मुकुंद गाए न कृष्ण गीत हे न नाही जानी के बा पड़े कौन भीत। जैसे ही मुकुंद दत्त गाने शुरू करते थे हे न नाही जाने के बा पड़े कौन भीत, लोग कब गिरते रहते थे मालूम नहीं। मुकुंद दत्त यहाँ पे गा रहे हैं, आप सोचिए हमारे यहाँ पे अगर कोई कीर्तन करना शुरू कर, प्रभु जी कीर्तन करने लगे मधुर कीर्तन और एकदम एक एक के भाव, एक भक्त गिर रहा है अष्ट विकार में, किसी को कोई विकार आ रहे हैं, किसी को ऐसा होएगा सब हलबली मच जाएगी। अरे क्या हो रहा है इन लोगों को, बाहर के लोग जब जाएंगे बोलेंगे पागल हो गए क्या, कोई नाचने लगे और कोई गिर के पैरालिसिस हो जाएगा, किसी के हाथ निकल जाएंगे, अष्ट विकारों में ऐसा होता है, किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कोई एकदम हक्का बक्का ऐसे ही रह जाएगा। तो ये अष्ट विकार मुकुंद दत्त की सभा में होते थे, जहाँ पे अद्वैत आचार्य के घर पे जब वो कीर्तन करते थे। केह कांदे केह हासे केह नृत्य करे गड़ा घड़ी आय केह वस्त्र ना संबरे। और क्या करते थे, केह कांदे केह हासे, कोई नाचते गाता था, कोई हंसता था, कोई चिल्लाता था जोर जोर से कि हाँ नृत्य करे, और आगे गड़ा गड़ी आय केह वस्त्र ना संबरे, और गिर जाते थे, गिर के एक दूसरे को लोटपोट होते थे और उनके कपड़े गिर निकलने लगते थे और कपड़े संभाले नहीं जाते थे, कोई किसी के कपड़े निकल जाते थे, फिर भी उसको पता नहीं होता था कपड़े निकल गए मेरे। हुंकार कर ये केह माल शात मारे केह गिया मुकुंदेर दुई पाय धरे। ऐसी दबाव होती थी, ये कीर्तन है। हुंकार, कोई बहुत जोर से गरजना करता था, बोलता था अभी माया के सारे दुष्ट लोगों को ऐसा प्रचार करूंगा ना कि नवद्वीप में जितने भी भौतिकवादी हैं, जो भी भगवान की भक्ति से विलग बोल रहे हैं, उनको जाके अभी परास्त कर दूंगा, ऐसा जोश आ जाता था कई बार भक्तों में, और निकल जाते थे। और कुछ भक्त जाते थे मुकुंद के चरण कमल पकड़ लेते थे और उनको नाचाने लगते थे, अपने कंधे पे ले लेते थे। एई मत उठे परमानंद सुख न जाने वैष्णव सब आर कौन दुख। और ऐसी आशा होनी चाहिए हम सब की कि ऐसे एक परमानंद परम आनंद का सुख निकल उठता था वहाँ पे, सब जगह पे आनंद ही आनंद, और ऐसे समय में वैष्णवों को बिल्कुल दुख नहीं रह जाता था। असल में इन वैष्णवों को क्या दुख होता था आगे बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, इन वैष्णवों को एक ही दुख था, अपना दुख नहीं था क्योंकि उनको चिंता तो थी नहीं, भगवान संभाल रहे हैं, एक दुख रहता था उनके दिल में कि ये जो अभक्त हैं इनको कब कृपा मिलेगी, कब भगवान अवतीर्ण होंगे, ये कब समझेंगे भक्ति को, ये ऐसा दुख होता था, ऐसी करुणा कि उनका हृदय फटा जाता था। बोलते हैं अद्वैत आचार्य इन भक्तों का हृदय फटता था, कब वो दिन आएगा, कबे हबे बोलो से दीना मार, वो जो उसकी ये जो गीत है उसके अंत में यही बोलते हैं, कब मेरे अंदर ऐसी करुणा आएगी लोगों के लिए, जब मैं प्रचार करूंगा लोगों को, कब मेरे अंदर वो करुणा आएगी, जब मेरा हृदय भी इन भक्तों जैसे फटेगा दूसरों के दुख के लिए। अभी साधन भक्ति में होता है अपने ही दुख के लिए फटता है, यार इतने साल जब भजन करते करते हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं, अब हो तो रहा नहीं, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया अपने बारे में, हो तो रहा नहीं, इसका ये नहीं कि अरे कब भाव जागेंगे भाव, अरे यार वो दुख मिटाने के लिए आया था इस कॉन में, वो दुख तो बढ़ते आ रहे हैं। कल मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, ऐसी चर्चा में बात आई कि शुरुआत में भगवान बड़ा अच्छा लॉलीपॉप देते हैं, बड़ा खुशी खुशी आती है, कुछ 10 साल के बाद में ज़्यादातर भक्तों को 10-15 साल में बड़ा तकलीफ आती है, बड़ी तकलीफ आती है, तब लगता है क्या करने आया था, क्या हो रहा है, दुख मिटाने आया था कि दुख बढ़ाने आया था, हो क्या रहा है। ये करीब करीब 10-15 साल में ये ऑपरेशन चालू होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में हुआ था, सबको याद होगा, तो टेररिज्म का अगेंस्ट एकदम पूरे तरीके से, अब एक्चुअली वो चीज होती है जो असल में हमको शुद्ध करेगी, हिरण्यकश्यप को जो फाड़ा था ना नरसिंहदेव ने, वो होने लगता है। इस समय अगर संभाल लिया तो कुछ और 5-10 साल अगर भजन करते रहे, ऐसा निकल के आएगा फिर टेंशन ही नहीं, फिर एकदम गाड़ी बढ़िया जाएगी। लेकिन ये एक समय है, when the going gets tough, the tough gets going, बोलते हैं कि जब बहुत तकलीफ आती है तो जो एक्चुअल सिद्धांत में डिगे हुए, सिद्धांत में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से गड़े हुए भक्त हैं, वो टिके रहते हैं, बाकी उड़ जाते हैं। इसलिए सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, लीला भी, लेकिन सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। लीला सिर्फ है तो ऐसी जब हवा चलेगी, लेकिन इस जीवन की हवा हर समय एक सी नहीं चलती, कभी उतराव चढ़ाव आते हैं। तो जब हवा चलेगी जो तूफान वाली, तो हम तभी संभलेंगे जब सिद्धांत हमको क्लियर है कि भगवान रक्षा करेंगे, कर्मी की भी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा नहीं करेंगे यार, कर्मी को एक निपट हिटलर जैसे नास्तिक की भी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा नहीं करेंगे, वो भक्त समझेंगे। इसके लिए भागवतम में जो सिद्धांत हैं उनको बहुत ज़रूरी है, और ये इसमें भी सिद्धांत बोलते ही हैं। अच्छा, अब और मनोहर लीला है, 5 ही मिनट बचे, ठीक है, करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 5 मिनट में फिर बंद कर देंगे। अब ये है, जब चैतन्य महाप्रभु पकड़ते थे, कैसे पकड़ते थे मुकुंदत को, कैसे पकड़ते थे मुकुंदत, कैसे भागते थे, उसकी चर्चा है। प्रभु ओ मुकुंद प्रति बड़ सुखी मने, देखी ले मुकुंदे रे धरे न धापने। हालांकि मुकुंद दत्त को देखने के बाद प्रभु को बहुत सुख मिलता था कि कितना अच्छा भक्त है, मैं तो ये लीला कर रहा हूँ एक पांडित्य की, लेकिन ये बहुत अच्छा भक्त है। लेकिन क्या करते थे, प्रभु पकड़ लेते थे उनको, देख ही ले मुकुंदे रे धरे ना अपने, पकड़ते थे कहाँ जा रहे, और फिर प्रभु जिज्ञासी जिज्ञासे न फाकी वाखने मुकुंद, प्रभु बोले किचू न है आर लागे द्वंद। फिर पकड़ते थे और प्रभु बोलते थे बोलो बोलो कुछ बोलो, बताओ कुछ तुमने क्या पढ़ाया आज। और दोनों, ये ध्यान रखिए, दोनों एक ही क्लास फ्रेंड थे, दोनों एक ही उम्र के थे, तो इसमें और भी मजा आता था उनको। तो पकड़ लेते थे और बोलते थे तुमने क्या पढ़ा, तो वो बताते थे क्या पढ़ा, और जैसे ही बताते थे उसको काट देते थे, और काटने के बाद में फिर चर्चा लग जाती थी। चर्चा क्यों लगती थी, क्योंकि अगले इसमें बोल रहे हैं मुकुंद पंडित बड़ा प्रभुर प्रभावे, मुकुंद दत्त जो हैं वो भी बड़े पंडित थे, किसके प्रभाव से, प्रभुर प्रभावे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ये रस लेना था। तो मुकुंद तो उस गांव के सबसे बड़े पंडित थे, नवद्वीप के सबसे बड़े पंडित थे, तो वो भी उनको भी मजा आता था, अच्छा आया बड़ा ये निमाई पंडित, आज तो हराऊंगा इनको, तो पकड़ लेते थे, तो ये भी बोलते थे। और फिर पक्ष प्रतिपक्ष करी प्रभु सहने लागे, फिर पक्ष प्रतिपक्ष एक आर्ग्यूमेंट ये देते थे उसको, वो काटते थे, फिर वो आर्ग्यूमेंट देते थे इसको काटते थे, और ये लगा रहता था। लेकिन अंत तो गत्वा जीत किसकी होनी है, निमाई पंडित जीत नहीं है, और जीतने के बाद में वो चले जाते थे। तो क्या होता था, एक दिन ऐसा हुआ, वंस अपॉन अ टाइम, बड़ा सुंदर इसमें एक दिन की बात बताते हैं। राजपथ दिया प्रभु आई से न एक दिन, एक दिन राजपथ पे, अच्छा ये भी बड़ा ऐश्वर्य दिखाया इसमें कि निमाई पंडित जब चलते थे ना, एक हाथी जैसे चलते थे, हाथी जो होता है वो अकेला नहीं चलता, उसके पीछे उसके चिल्लर पार्टी होते हैं, वो भी चिल्लर पार्टी चिल्लर नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये राजा होता है उसके पीछे कई और हाथी होते हैं उसके नमस्कार करते हुए, उसके बच्चे होते हैं, ये होते हैं, पत्नियां होती हैं, बहुत एक परेड से चलते थे। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे तो राजपथ जो मेन स्ट्रीट थी, मेन जो रोड था, पूरा घिर जाता था और कोई आ नहीं सकता था, और सबको बाजू के व्हीकल्स को बाजू से जाना है। फिर बीच में चलते थे, और चलते चलते उन्होंने एक दिन क्या देखा, राजपथ दिया प्रभु आई से न एक दिन, पढ़ू यार संगे महा औधे औधत्ते रचिन्न। और पढ़ू यार मतलब उनके साथ के, उनके जो बालक थे वो पढ़ाते थे जिनको, वो स्टूडेंट्स उनके साथ चलते थे, और स्टूडेंट के साथ में चलते चलते वो एक ऐसे गर्व से चल रहे थे। मुकुंद आए न गंगा स्नान करी बारे, प्रभु देखी आड़े पाय पलाई लको कथो दूरे। मुकुंद जा रहे थे गंगा स्नान करके और प्रभु ने देखा, भागे उसके उनके पीछे। देखी प्रभु जिज्ञासे न गोविंदे रस्थाने, ए बेटा हमारे देखी पलाई लके ने। बेटा बोलते थे, ये बेटा क्यों जा रहे हैं यहाँ से, मेरे को देख के भाग क्यों रहा है, गोविंद को बोलते थे। गोविंद उस समय भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही थे, जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित की लीला कर रहे थे, जो आपको याद होगा गोविंद जो उनके पर्सनल सर्वेंट रहे। देखी प्रभु जिज्ञासे न गोविंदे रस्थाने, ए बेटा आमारे देखी पलाई लके ने, ये मेरे को देख के भाग क्यों रहा है। तो गोविंद बोलते हैं, गोविंद बोले ना आमी ना जानी पंडित, हे पंडित मुझे नहीं मालूम, तुम्हें बताओ कौन आर्ग्यूमेंट करेगा पंडित के साथ, मुझे नहीं मालूम क्यों भाग रहा है, बता तो सकते थे लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों भाग रहा है। आर कौन कार्य वा चली ल कौन भीतर, कोई कार्य रहा होगा, जाने दो उसको, जाने दो क्यों पकड़ रहे हो, आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं रखा, जाने दो उसको, कुछ कार्य रहा होगा भागने दो। प्रभु बोले जानी लना ये लागी पलाया, बहिर्मुख संभाषा करी तेनायुयाया। प्रभु बोलते हैं मेरे को मालूम है ये क्यों भाग रहा है, इनको मालूम है मैं तो बहिर्मुख हूँ, भगवान के सिर्फ बहिर्मुख हूँ, और सिर्फ पंडित ही हूँ, इसलिए भागता है क्योंकि ये भगवान का एकदम 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 अनन्य भक्त है। ए बेटा पढ़ाए यत वैष्णवेर शास्त्र, ये जो लड़का है ना ये वैष्णवों के शास्त्र पढ़ रहा है, मैं तो पंडितीगिरी कर रहा हूँ, ये वैष्णवों के शास्त्र पढ़ रहा है इसलिए मेरे से भागता है। पांजी वृत्ति टीकामी वाखानीय मात्र, मैं तो सिर्फ पांजी टीका जो व्याकरण के अलग अलग चीज़ें होती हैं वो उनमें ही मैं पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मेरे से मुँह चुराता है। आमारा संभाषे ना ही कृष्णेर कथन अतएव आमा देखी करे पलायन, मेरी मुँह से जो संभाषणा आती है उसमें कृष्ण का कोई कथन होता ही नहीं और इसको उससे कोई लेना देना नहीं, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ ये नहीं, इसलिए अतएव आमा देखी करे पलायन संतोषे पाड़े न गाली प्रभु मुकुंदेरे। अभी देखिए कंट्रोवर्शियल चीज है, एक तरफ वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं संतोषे पाड़े न गाली प्रभु मुकुंदेरे, एक तरफ बोलते हैं कि ऐसा सा इतना बड़ा अच्छा आदमी है अतवे आमा देखी करे पलायन इसलिए वो भागता है, लेकिन दूसरी जगह पे वो गाली देते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो हिंदी में गाली बोलते हैं वही बंगाली में भी लिखा है, इसलिए बहुत सिंपल भाषा है ये बंगाली, एटलीस्ट ये बंगाली क्या बोलते हैं संतोषे पाड़े न गाली प्रभु मुकुंदेर, संतोष होने के बाद गाली देते हैं मुकुंद, ऐ भाग रहे है पागल मूर्ख कुछ आता नहीं इसको, और लेकिन कैसे बड़े संतुष्टि के साथ कि बहुत अच्छा है मुकुंद मेरे से भाग रहा है, ये इतना अच्छा भक्त है ये बहुत अच्छा है। अब दो और पढ़ के समाप्त करेंगे, आ गए सर्विंग इंचार्ज आ गए। व्यपदेशे प्रकाश करे न आप नारे प्रभु बोले आरे बेटा कत दिन थाके, तो बोलते हैं और कितने दिन रुकेगा, गोविंद को बोलते हैं ये देखते हैं कितने दिन और मेरे से भागेगा। पालाईला कोथा मोरा एड़ाई बेपाक हासी बोले प्रभु आगे पढ़ो कत दिन, सॉरी हासी बोले प्रभु आगे पढ़ो पढ़ो कत दिन तबे से देखी बा मोर वैष्णवेर चिन्ह, ए मत वैष्णव मुई हई मु संसारे अज भव आसी बेक आमर दुयारे। बोलते कितने दिन जाएगा, एक दिन अभी तो मैं थोड़े दिन और पढ़ लेता हूँ या व्याकरण वगैरह, एक दिन मैं भक्त बन के दिखाऊंगा और फिर ये सब अज भव, अज मतलब किसको बोलते हैं अज, जो अजन्मा है ब्रह्मा जी, और भव भव मतलब शिव जी, ये भी आएंगे मेरे द्वारे मेरे सामने आके मस्तक नतमस्तक होंगे। सुना भाई सब ए आमारा वचन वैष्णव हई मुमुई सर्व विलक्षण, आमारे देखी आए बे ये सब पलाया ताहारा यो ओ ये न मोरा गुण कीर्ति गाया। अभी तो ये लोग सब देख के मेरे को भाग रहे हैं, एक दिन यही सारे मिलके मेरी कीर्ति का गुणगान करेंगे। अब चैप्टर 12 जाता है तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, ये लीला है, अंत एक बोल के एक प्रार्थना बोल के समाप्त करेंगे हम। प्रार्थना बहुत जरूरी है क्योंकि लीला में अनुरक्त होने के लिए जैसे मैंने बोला था मन भगवान की शक्ति है और भगवान ही हमको हमारे मन को वापस भगवान में लगा सकते हैं, हमने अलग हटाया भगवान लगा सकते हैं। तो एक बड़े सुंदर चैतन्य चरितम में, नहीं चैतन्य चरितम और कहीं पर ये आता है श्लोक आता है चैतन्येति कृपामयेति, बोलिए सब परमोदारेति नाना विधा प्रेमावेशित सर्वभूत हृदयेति आश्चर्य धामनिति गौरांगेति गुणार्णवेति रसरूपेति स्वनाम प्रियेति अश्रांतम मम जलपतो जनिर्यम यायाद इति प्रार्थये। बहुत सुंदर है, इसमें बोलते हैं कि हे भगवान गौरांग महाप्रभु गौरांग ये जो खुद का ही नाम गुणगान कर रहे हैं जो बहुत ही सुंदर कांति वाले हैं, चैतन्य नाम है जिनका, गौरांग महाप्रभु नाम है जिनका, वो कृपा इतनी सी मेरे पर करें हम सब पे करें कि अशांतम मम जलपतो, जलपतो मतलब बोलना, कि अशांतम बिना रुके अनअबेटिंगली बिना रुके मेरी जिह्वा में सिर्फ उनका कीर्तन गान हो उनकी लीलाओं का स्मरण हो, अगर कोई मिले उनके सामने बोलूं अगर नहीं तो अकेले में बोलूं। वहाँ पे भक्ति संसद से लिखते हैं कि भक्त अकेले जोर जोर से भगवान की लीलाओं का पढ़ता रहता है गाता रहता है, तो ऐसा करूँ अशांतम मम जलपतो जनेरियम यायात इति प्रार्थये, केवल हे चैतन्य महाप्रभु आज के दिन आपसे केवल इतनी कृपा इतनी करुणा की याचना है, इतनी करुणा कर दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, मुकुंद दत्त की जय।